हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 340। अरुण की बात सुनकर स्वीटी को काफी अच्छा लगा और वो फिलहाल ब्लश कर रही है, ये सोचकर कि कोई उसकी भी फिक्र करता है। लेकिन वो ये बात अभी जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए उसने एकदम स्ट्रेट आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी फिक्र करने के लिए पहले ही काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, और वैसे भी इतनी दूर से कौन सी फिक्र कर पाओगे? कहाँ तुम हो और कहाँ मैं? अरुण ने थोड़ी उदासी से कहा, ऐसे क्यों बोल रही हो स्वीटी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ? स्वीटी हमेशा की तरह ही इरिटेट होकर उसे मना करती हुई बोली, नहीं, मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे पता करना, और तुम ऐसा कुछ भी फील नहीं करते हो। सब कुछ बस तुम्हारी गलतफहमी है, हमारे बीच कुछ भी नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अरुण एकदम सख्त लड़के ने बीच में ही बोल पड़ा, स्वीटी देखो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है तुम अपनी तरफ से बोलो, लेकिन मेरी तरफ से बोलने वाली तुम कोई भी नहीं होती हो, और मैं किसके लिए क्या फील करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं, इसलिए प्लीज। स्वीटी अरुण की आवाज में उदासी को महसूस कर सकती है, और उसे उदास आवाज में बोलते हुए सुंदर स्वीटी को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अपना दिल मजबूत करके वो उसे समझाती हुई बोली, अरुण देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी किसी भी बात का कोई फायदा है, और जिन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता और आगे जाकर उनका कोई भी हल नहीं निकलना, तो हमें ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। बस इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी एज में ऐसा अट्रैक्शन होना बहुत ही नॉर्मल। स्वीटी ने जैसे ही एज की बात की तो अरुण एकदम चिढ़ता हुआ बोला, हाँ, और तुम तो जैसे बहुत ज्यादा बड़ी हो, क्या हमेशा एज को लेकर इतना ज्यादा हाइपर रहती हो तुम? सिर्फ 2 या 3 साल का ही फर्क होगा हम दोनों में, और क्या होता है इससे? वैसे भी ये सिर्फ कोई अट्रैक्शन नहीं है जो मुझे हर दूसरी लड़की पर होता हो। उसकी बातें सुनकर स्वीटी थोड़ा बहुत सोच में पड़ी जा रही है, इसलिए वो ऐसे ही इस बारे में सोचने लगी है। और वो जैसे ही इस बारे में सोचने लगी, उसने तुरंत ही ये सारे ख्याल अपने दिमाग से झटकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अरुण, इसलिए प्लीज। और वैसे भी तुमने भाभी के बारे में पूछने के लिए की कॉल की थी ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाभी को आज सुबह ही होश आ गया है, तुम चाहो तो उनसे जाकर हॉस्पिटल में मिल सकते हो। सुनैना के होश में आने की बात सुनकर अरुण खुशी से उछलते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर मैं कॉल ना करता तो तुम खुद से मुझे कॉल करके ये बात भी नहीं बताती क्या? लेकिन फिर बात खत्म करते हुए उसकी खुशी भी एकदम खत्म हो गई। स्वीटी ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाली थी, मैं बस अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। और अरुण फिर से उसी तरह मायूसी से बोला, तुम हॉस्पिटल से वापस भी आ गई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद तुम अभी वहां पर ही हो और मैं आऊंगा तो हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। उस दिन फिर से ऐसी लो वॉइस सुनकर स्वीटी ने बात बदलते हुए कहा, कम ऑन अरुण, हमारी मुलाकात हो ना हो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अभी जाकर पहले भाभी से मिल लो। अरुण भी अब थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, हाँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ और तुमसे मिलना भी जरूरी है, ये बताओ तुम कहाँ पर मिल सकती हो? स्वीटी अब इरिटेट होते हुए बोली, क्या जरूरी है, इतना कुछ भी जरूरी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, और इस हफ्ते से ही मैंने दोबारा इंस्टीट्यूट जाना शुरू किया है, तो काफ़ी सारा वर्क है, मुझे वो सब असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, और बहुत काम है, हॉस्पिटल भी जाना होगा। फिलहाल मैं यहाँ नैना के साथ अक्षित सर के घर में हूँ, और यहाँ हम नहीं मिल सकते अरुण। स्वीटी ने भी सीधे मना नहीं किया तो अरुण के मन में भी एक उम्मीद जागी और उसने सीधे ही पूछा, तुम कहाँ हो कहाँ नहीं, कितनी बिजी हो और कितनी नहीं, पर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ इतना बताओ तुम मुझसे मिलना चाहती हो या नहीं। इस बार स्वीटी मायूसी से बोली, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, और वैसे भी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम पता नहीं कितने महीनों से नहीं मिले, अभी हॉस्पिटल में तो मिले थे। अरुण थोड़ा सा खुश होते हुए बोला, देखो, मिलने के लिए हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं होती, और तुमने मना भी नहीं किया, इसका मतलब तुम भी मिलकर बात करना चाहती हो, मैं समझ गया। उसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर स्वीटी ने कुछ और बोलना चाहा, अरे नहीं अरुण, मेरी बात तो, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट में अरुण ने उसकी बात नहीं सुनी और इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, सारी बातें अब मिलकर ही होंगी, बाय। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर स्क्रीन की तरफ देखते हुए स्वीटी ने कहा, क्या यार, ये कुछ समझता सुनता क्यों नहीं है? ऐसा बोलते हुए स्वीटी ने अपना मोबाइल फ़ोन साइड में रखा और थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है, तो उसे परेशान देखकर साइड से निकलता हुआ विवान बोला, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम? दरवाजे के बाहर से आती हुई आवाज़ सुनकर स्वीटी ने एकदम चौंकते हुए कुछ तरफ देखा तो सामने विवान खड़ा था, और उसे देखकर स्वीटी अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोली, ओह, तुम हो, मुझे लगा ने। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो चुप हो गई तो विवान ने कहा, नैना, तुम्हें लगा कि नैना है, लेकिन उससे क्या घबराना, वो तो इतनी स्वीट है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। विवान की इस बात पर स्वीटी अपने मुंह में ही बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, मुझे कुछ ना कहें, लेकिन जब पता चलेगा सब कुछ उसके भाई से जुड़ा है तब। विवान ने हल्का सा अपना सिर उसकी तरफ झुकाते हुए उसकी कही बात सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमा बोल रही है तो विवान को भी समझ नहीं आया, इसलिए उसने सीधे ही पूछा, क्या आपने? आपसे ही बातें कर रही हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फिर भी? स्वीटी जल्दी जल्दी नहीं, मैं अपना सिर हिलाकर मना करती हुई बोली। नहीं नहीं, कुछ नहीं, और मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। विवान ने शक भरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, सीरियसली, तुम्हारे जैसी क्यूट और मॉडर्न लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। स्वीटी उसे पूरी बात और सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोली, हाँ ठीक है, मत करो, भरोसा क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मुझे फिलहाल घर से इतनी दूर आकर अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने का चांस मिला है, तो पहले मैं वो करूंगी या फिर फालतू की चीजें? विवान ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, अच्छा तो क्या प्यार करना तुम्हें फालतू की चीज लगता है? स्वीटी ने फिर से उसकी बात का जवाब दिया, नहीं प्यार करना नहीं, लेकिन ऐसे ही सौ के लिए किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाना या फिर रिलेशनशिप में आना, वो सब? विवान भी कुछ सोचकर मुंह बनाता हुआ बोला, अच्छा हाँ, वो सब तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन हम फिल्म में है ना, तो हमें ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए। स्वीटी ने उसकी बात पर कहा, अच्छा तो ये सब कुछ देख होता है क्या? मुझे तो लगा था वो तुम्हारी लास्ट फिल्म की को-स्टार सोनल मेहता, तुम दोनों का सच में अफेयर है और डेट कर रहे हो एक दूसरे को। विवान ने उसकी बात का जवाब दिया, अरे लेकिन फिर हमारी ब्रेकअप की भी तो खबर आई थी फिल्म रिलीज के 2 महीने बाद, वो नहीं पढ़ी क्या तुमने? खैर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। वहां से चला गया और अभी कुछ देर पहले विवान से की गई उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। सहगल हाउस। अवंतिका एक कोने में खड़ी हुई रो रही है, उसकी आंखें एकदम लाल हैं और चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान। उसके सामने एक औरत नेवी ब्लू कलर की डिजाइनर साड़ी पहनकर बैठी हुई है। उसने सर पर पल्लू नहीं लिया है, पर उनकी उम्र यही कोई 50 के पार लग रही है।
अवंतिका ने उसी तरह आंसू बहाते हुए कहा, मम्मी आप लोगों को विराज भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना, और मुझे बहुत कुछ अजीब फील हो रहा है उनको लेकर। उसकी बात सुनकर उस साड़ी वाली औरत ने कहा, हाँ तुम्हारे पापा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनस्वी ने कहा था कि वो किसी गलत काम करने के बाद आउट ऑफ सिटी जाकर छिप गया है। पता नहीं ऐसे क्या काम करता है ये लड़का। अपनी माँ के मुंह से ही विराज पर इल्ज़ाम सुनकर उसने परेशान होते हुए कहा, नहीं मम्मी, विराज भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उन्हें ज़रूर किसी ने फंसाया होगा, अवंतिका पूरे विश्वास के साथ बोली। तो इस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो कि सोफा पर पैर क्रॉस करके बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं और उनके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन है, तभी उस आदमी ने कुछ सोचते हुए बोला, ज़रूर उसने कुछ तो काम किया है, नहीं तो ऐसे गायब तो नहीं होता वो। नहीं पापा, आप क्यों आप भी मनस्वी की बातों में आ रहे हैं? ज़रूरी नहीं है ना विराज वो खुद से भी छुपे हुए हों, हो सकता है या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया हो। साड़ी वाली औरत ने आदमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, इतने बड़े लड़के को कोई क्यों किडनैप करेगा, और अगर किसी ने किडनैप किया होता तो हमारे पास कोई धमकी भरा मैसेज या फिर कॉल तो आती ही। उन दोनों की बातें सुनकर अवंतिका डिसअपॉइंटमेंट से बोली, बस आप लोग इसी तरह यहाँ पर आपस में ही बात और बहस करते रह जाइए, वहाँ पर भाई का पता नहीं क्या हाल होगा, आप लोगों को तो उनकी ज़रा भी फिक्र नहीं है, उल्टा उनकी ही गलती ढूंढ रहे हैं। अवंतिका की इस बात पर उस औरत ने कहा, नहीं बेटा, वो हमारा बेटा है, तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, हमारा भी बेटा है और हम उसे ढूंढेंगे, हमें भी उसकी फिक्र है। अवंतिका उसके बारे में सोचकर उदास होते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आप लोग भी इतने परेशान हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट क्यों नहीं हमारे हाथ लग रहा, कब से तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज 4 दिन होने वाले हैं भाई को गायब हुए, और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, आई रियली मिस हिम एंड वरिड फॉर हिम। अपनी बात पूरी करते हुए अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए और वो अब लगभग पूरी तरह से रोने लगी। इस बार अवंतिका के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, अवंतिका बेटा देखो, इस तरह रोने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, और तुम अगर इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकती तो कम से कम खुद को ही थोड़ा शांत रखो। उसे इस तरह रोते देखकर वो साड़ी वाली औरत जो कि उसकी माँ है वो भी आ गई उसके पास और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगी, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि अवंतिका विराज के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है और वो दोनों हमेशा ही साथ रहते थे, इतने सालों में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, और इसीलिए अवंतिका को उसकी कमी इतनी ज़्यादा खल रही है। अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर अवंतिका ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और फिर वो रोते हुए वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ ही भाग आई, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के सामने दोबारा से नहीं रोना चाहती।